और से जब हम देखते हैं तो हमें मुक्ति में और संसार और क्यों अंतर नहीं है? तो मुक्ति और संसार, संसार भी एक समय की पर्याय और मुक्ति भी एक समय की पर्याय। पहली बात, संसार पर्याय भी सापेक्ष पर्याय है, उसमें कर्म के उदय की अपेक्षा आती है, और मुक्ति पर मुक्ति रूप दशा भी सापेक्ष दशा है, उसमें कर्म के अभाव की अपेक्षा है। संसार पर्याय के अवलंबन से भी विकल्प होता है और मुक्ति पर्याय के अवलंबन से भी विकल्प होता है। सम्यक दर्शन में संसार पर्याय का भी स्वीकार नहीं होता और सम्यक दर्शन में मुक्त पर्याय का भी स्वीकार नहीं होता। अर्थात संसार पर्याय में अपनापन जिस तरह वह मिथ्या दर्शन है, मुक्ति की पर्याय में अपनापन भी मिथ्या दर्शन भी है, क्योंकि पंचे मूला ही पसंद। पर्याय में कौन पर्याय को नहीं देखना, उत्पाद भ्रांति है ये, त्रिकाल त्रिकाल वही का वही है। आगे इस तरह जब हम स्वरूप देखेंगे तो मुक्ति और संसार का ये तो है, मुक्ति माने पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय और संसार माने विकारी पर्याय। ये होने पर भी परम पारनामिक भाव की ओर से जब देखते हैं तो परम पारनामिक भाव जो निर्देश है, शुद्ध है, ध्रुव है, नित्य है, अविनाशी है ना, उत्पाद रूप नहीं है, ये सारे लक्षण पर्याय में निकाले, चाहे मुक्ति की पर्याय वो शुद्ध हो, इसको अपन यू कह सकते हैं। तो मुक्ति की पर्याय पवित्र है और संसार की पर्याय अपवित्र है, ठीक है, लेकिन परम पवित्र कोई नहीं। परम पवित्र बनाने का जिसका अवलंबन लेकर के पवित्रता प्रकट की जाए, प्रकट होती है, उसको बोलते हैं परम पवित्र। वो स्वयं पवित्र है, मुक्ति की पर्याय पवित्र है, लेकिन मुक्ति की पर्याय के अवलंबन से दूसरी मुक्ति की पर्याय है। दूसरी भाषा में कहें सम्यक दर्शन पवित्र है, मुक्ति की छोड़ दो समय दर्शन की चर्चा करें, वो भी दृष्टि मोक्ष है ना, तो सम्यक दर्शन की पर्याय पवित्र है लेकिन परम पवित्र नहीं। परम पवित्र माने जिसके अवलंबन से पवित्रता की प्राप्ति हो। तो पवित्रता की प्राप्ति किसके अवलंबन से हो, जिसके अवलंबन से पवित्रता की प्राप्ति हो वो परम पवित्र, और पवित्र वो परिणति स्वयं पवित्र हो सकती है, संसार परिणति अपवित्र हो सकती है, लेकिन आश्रय दोनों का नहीं, मुक्ति मार्ग में दोनों का आश्रय नहीं। यानी कहेगा क्या, मुक्ति मार्ग में मुक्ति मार्ग की परिणति का आश्रय नहीं है, मुक्ति मार्ग में मुक्ति की परिणति का आश्रय नहीं है, मुक्ति की मार्ग में संसार परिणति का आश्रय। इस अपेक्षा से जब हम विचार करते हैं तो हमारे लिए तो दोनों एक जैसी हो गई ना, आश्रय करने योग्य तो दोनों नहीं है ना। तो ये अपेक्षा से कह रहे हैं, इस दृष्टि से कह रहे हैं, मुक्ति और संसार में कोई अंतर नहीं है। इतना भड़क चली जाती है ये बोलने के लिए बोलते, अभी तो पुण्य को हे बोले ना तो इस जीव का पसीना हो जाता है, पुण्य को इतना ही है, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। सच्चाई यहां कहां तक लेंगे बात को, हम पुण्य पाप में ही जोड़ बाकी गुणा भाग लगा रहे हैं, जहां संसार और मुक्ति में अंतर नहीं है और हम पुण्य पाप में अंतर। ये है आचार्य कुंज कुंज का मूल तत्व ना, जिसे टीकाकारों ने अपने सामने रखा और हृदय सीधे अपने को समझाया, ये आपको हृदय नहीं समझाते अपने आप पढ़ के निकालोगे है किसी के पास। नहीं लगता। इसलिए ये तो एक अपने जीवन का एक क्रम बनना ही चाहिए। सामूहिक तो ठीक है, जो चलता है बहुत बढ़िया है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी एक आदत अपने को डाल लीजिए कि कम से कम कोई भी एक ग्रंथ का अध्ययन तो होता है। ये उसमें भी ये आप ये सामने सब टाइटल चलेगी, इसलिए कोई आपको अपेक्षा नहीं होती। सामने शास्त्र रखो, वर्ल्ड टू वर्ल्ड प्रोसेस की किताब रखो कहीं। कभी कभी मुझे लगता है, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे लगता है कि सामने पुस्तक होने में हमारा उपयोग ज्यादा है। हाँ उससे ज्यादा है अभी वो ठीक है, वो एक विकल्प है। सार्वजनिक सभाओं की वो विकल्प है, सार्वजनिक सभाओं में इतनी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। व्यक्तिगत हाँ वो मूल वो भी देख ले, वो देख करके सामने प्रवचन की किताब आपको उससे आपको उसमें अंडरलाइन करने की हृदय में जो हृदय एक वाक्य को मैं आपको एक क्रिकेटर बता रहा हूँ, मैं जो जब काम करता हूँ तो मुझे पता है एक वाक्य को वो अलग अलग तरीके से चार बार पढ़ेगी। कभी उसका इतना सा हिस्सा पढ़ा, फिर आगे का हिस्सा पढ़ा, फिर दोनों हिस्से पूरे करके पढ़े और हर बार में वो कोई ना कोई अर्थ उसमें से निकाल कर बहुत पहली दृष्टि से स्वाध्याय करते हैं। लोगों को भी भ्रम हो गया आजकल बहुत लोगों को, क्या मूल ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ये तो गाइड है। अभी मैं एक ऑडियो सुन के आ रहा हूं, मूल ग्रंथ पढ़ना चाहिए, हृदय के प्रवचन तो गाइड है। मैंने कहा भाई साहब जिस तरह कुंज कुंज आचार्य की गाथाओं की अगर अगर हम हृदय के प्रवचन को गाइड कहेंगे, फिर मैं हमने ये भी तो कहेंगे आज हम हृदय के प्रवचन को गाइड करें, कल हम ये भी हिम्मत कर सकते हैं कि भैया आचार्य कुंज कुंज की गाथाएं मूल है, अमृत चंद्र आचार्य की टीका और प्रथम प्रबंधारी देव की टीका तो गाइड है। जिस तरह वो टीका है आचार्य कुंज कुंज की गाथाओं की वो टीका है, इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि गुरुदेव श्री ने इन गाथाओं और टीकाओं पर एक तरह से भाष्य प्रस्तुत किया। करके बता देते हैं कि आप अपना प्रैक्टिकल करके देख लेना, आप अगर आपको गुरुदेव का प्रवचन आप मत पढ़ो, आप पहले उस गाथा को पढ़ो और आप अपने हिसाब से उस गाथा का क्या अर्थ निकालते हो निकाल के अपनी कॉपी में नोट कर लेना और उसके बाद गुरुदेव का प्रोसेस सुन लेना। अपनी बुद्धि का महा अपने ख्याल में है अपन का खाइए ना। क्यों देखो एक चीज अभी मैं समझ लेना, जिनवाणी के अर्थ कभी भी सर्वोत्तम ज्ञान के आधार से नहीं होते। जिनवाणी के अर्थ स्वानुभूति सर्वोत्तम तो है, लेकिन उसके साथ जब तक स्वानुभूति का स्वानुभूति का प्रणमन नहीं होगा तब तक जिनवाणी का मर्म नहीं हो सकता। शब्दों के अर्थ बता सकते हैं लेकिन शब्दों का मर्म नहीं बता सकते। शब्दों के अर्थ में और मर्म में बहुत अंतर है, उतना ही अंतर है जितना पंडितों में गुरुदेव में अंतर। शब्दों के अर्थ हम लोग कर सकते हैं लेकिन उसका मर्म है ना, तो मर्म को आत्मानुभव उसी बता। अपने जीवन में एक क्रम बना लेना चाहिए, एक एक प्रकार किसी भी प्रकार मुझे ये काम करना बराबर। देखो अभी आया संसार मुक्ति में तथा संसार में अंतर नहीं है, ऐसा ही वास्तव में तत्व विचारने पर क्या विचारने पर तत्व कौन सा तत्व अपने तत्व का तत्व विचारने पर अर्थात परमात्म वस्तु स्वरूप का विचार अथवा निरूपण करने पर कौन कहते हैं शुद्ध तत्व के रसिक पुरुष कहते हैं। क्यों उनको शुद्ध तत्व का रंग चढ़ा है, रसिक शुद्ध तत्व के रसिक है। हमें तो मुक्ति और संसार में और मुक्ति में कोई अंतर नजर नहीं आता, क्यों नहीं आता भाई, कि हमें तो मुक्त स्वरूप मिल गया ना। सुमानी जी का एक वचन आता है कि नहीं आता, हमें तो मुक्ति सुंदरी के नाम की गुरुदेव का प्रवचन है, सबका प्रवचन है। मेरे ख्याल से शायद 51-52 का प्रवचन है, आत्मधर्म के 10वें वर्ष के अंत में से हमने प्रवचन दिया। आप पढ़ो उस प्रवचन को, उछल जाए ऐसा प्रवचन। आगे ये बात आई, अब इतनी बार आने के बाद जिस गाथा की मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं, गुरुदेव जब भी इस गाथा का प्रवचन प्रारंभ करते हैं, आ गाथा भाई क्या है, तो इसमें छाई भाव को लेगा, इसलिए गुरुदेव बोलते थे आ गाथा घनी सकत्य। क्यों? तो अब तो क्या है, तत्व का लोग सुनने लगे, समझने लगे। ठीक है, जब बहुत पहले ये बातें जब बताई जाती थी ना, आत्मा मैंने भगवान आत्मा सुन करके जैसे मेढे की तरह का टकटकी लगा के देखे कि किसकी बात कर रहे हैं, भगवान आत्मा माने में। और जब केवल बने छाई भाव भी है, मैं आपको एक प्रश्न बताता हूँ, 41 नंबर की गाथा है ना, 41 नंबर की गाथा जिसमें कहा छाई भाव और चारों भाव भगवान आत्मा ने दी, उन्होंने कहा चारों भाव आवरण संयुक्त होने से मुक्ति का कारण है। अभी तो वर्ड टू वर्ड प्रवचन आया, इससे पहले प्रवचन रत्न चिंतामणि हुआ है अभी भी वो प्रवचन रत्न चिंतामणि की इस गाथा का अनुवाद किया, छाई भाव भी आवरण संयुक्त है, चार भाव आवरण संयुक्त होने से भाई साहब दो दिन तो माता कहा छाई भाव के आवरण, छाई भाव का आवरण का अभाव नहीं हुआ, छाई भाव में तो द्रव्य आवरण नहीं है और छाई भाव में तो भाव दिया। क्या दिया? आवरण नहीं है, इतनी अपेक्षा है नहीं उसमें, इसमें आवरण का अभाव है, अभाव की अपेक्षा है ना, अभाव की अपेक्षा है, इसको भी उसका आवरण कहते हैं। क्या आचार्य जी सही, क्या टीकाकार का विश्लेषण और क्या गुरुदेव का प्रतिभा, उसको आवरण नहीं होता, क्यों? आवरण की अपेक्षा है, उसको आवरण के अभाव की उपाधि नहीं है, वो उपाधि रहित नहीं है। और जब ये बात चलती है ना, लोग कहते हैं हमको समझ में नहीं आई ये बात, मैं एक पेटेंट उदाहरण है मेरा, वो उदाहरण कोई उदाहरण देता हूँ, लोगों को उदाहरण नहीं देता हूँ। बहुत से लोगों की एक आदत होती है, और वो आदत क्या होती है, उनको उपाधियों में जीना अच्छा लगता है, नाम क्या है, खाली नाम हो अकेला, मतलब क्या हो सकता है, दस पांच तरह की डिग्रियां लगे, फलाने के अध्यक्ष, फलाने के मंत्री, फलाने के महामंत्री, फलाने के संस्थापक, फलाने के ये, फलाने के वो, है ना, दस बीस संस्थाओं के या ट्रस्टों के या सामाजिक प्रतिष्ठानों के नाम जुड़े हो, और उनमें भाई साहब पदवी पर हो, और लेटर पेड पे वो सारी पदवियां छपे, आधी लेटर पेड पदवियों से छपी हो, लेटर पेड का साइज बड़ा करना पड़े, लेटर लिखने के लिए जितनी जगह चाहिए, और पदवियों के लिए साइज बड़ी बड़ी साइज के लेटर पेड बने, बोले गुंडे का उदय पदवियां मिल रही, अब पाप का उदय है क्या, सबने कहा आपने हमारी बहुत सेवा की, अब आप बहुत उम्र के हुए हैं, हम चाहते हैं आप भगवान का पद, और एक एक लाइन से एक एक के सबने उसको सुधारा, बड़ा परेशान, लेटर पेड छपनी थी, दिवाली का मौसम था, नहीं लेटर पेड छपनी है भाई साहब, सारी पत्रियां गई थी, अब मैं करूं क्या, आज तक मैंने लेटर पेड खाली करके रही, अपने जैसे लोगों के पास फोन, हमारा छाई भाव है ना, कुछ काम आएगा, क्या मतलब, मैंने कहा भाई अब तू पदवियां नहीं है ना मेरे पास, गुरु तो है नहीं, मैंने कहा तेरी लेटर पेड उतनी की उतनी रहेगी, बस अध्यक्ष उसके पहले एक शब्द जोड़ना पड़ेगा भूतपूर्व, महामंत्री एक शब्द जोड़ना पड़ेगा भूतपूर्व, अरे इसका मतलब क्या, वर्तमान में कुछ भी भूतपूर्व ही है सारा का, एक ही ये छाई भाव है ना, एक छाई भाव की अभाव की अपेक्षा, उसको विचार करते उसके अभाव की अपेक्षा, उसके अभाव का अभाव पालन करता है,
ये गाथा बहुत शक्त है और इस गाथा पर इतने प्रवचन आप देखो जो स्पेशल प्रवचन है गुरुदेव श्री के प्रवचन अमृत में छपे हुए उसमें भी 50 गाथा का प्रवचन है, 4 प्रवचन एक प्रवचन तो हमने कभी स्वर्ण गए थे करीब 10-15 साल पहले वहाँ किसी मोक्ष के घर का वास्तु प्रसंग और उस वास्तु प्रसंग में उन्होंने वो प्रवचन बजाया तब हमने पहली बार गुरुदेव श्री का नियम कार पर 50 गाथा का प्रवचन बनकर क्या गजब बात है कैसे क्या कहना चाह रहे हैं आकर अपन उस भाव को समझने का प्रयत्न देखो तो अब देखो यहाँ पे
पूर्ण द्रव्य स्वभाव को पूर्ण रूप स्वीकार करने वाली
तो पर्याय से द्रव्य पूरा नहीं होता, पूर्णता पूर्ण पर्याय से द्रव्य पूर्ण नहीं होता, बल्कि पूर्ण द्रव्य का स्वीकार करने से पर्याय पूर्ण होता है। क्या कहा, न्याय समझा है? क्या पूर्ण द्रव्य का स्वीकार करने से पर्याय पूर्ण होती है, पूर्ण पर्याय से द्रव्य पूर्ण नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्य पूर्ण तो पूर्ण है, तो अपूर्ण पर्याय द्रव्य को अपूर्ण नहीं करती, बल्कि द्रव्य की पूर्णता को स्वीकार नहीं करने वाली पर्याय का नाम अपूर्ण पर्याय है, अशुद्ध पर्याय है, विकारी पर्याय है। अब बोलो अब वो द्रव्य समाप्त पर्याय निरपेक्ष हुआ कि नहीं हुआ? शुद्ध पर्याय प्रकट हो इसलिए वो शुद्ध है, और शुद्ध पर्याय प्रकट ना हो तो वो शुद्ध नहीं है, ऐसी कोई अपेक्षा उस द्रव्य स्वभाव में नहीं। क्यों? क्योंकि नित्य निरोध की दशा में भी वो केवल ज्ञानी परमात्मा शुद्ध परमात्मा जैसा शुद्ध है। ये अपनी गाथा में आ चुका भवली ने संसारी आएगी, इसलिए दो गाथाओं में अपन लोग चर्चा कर चुके। ऐसी जब तक उस ध्रुव तत्व की पर्याय निरपेक्षता भी हमारे ख्याल में नहीं आवे, तब तक बात नहीं बनेगी। जब द्रव्य स्वभाव को स्वभाव कहेंगे, स्वद्रव्य कहेंगे, तब पर्याय को परभाव और परद्रव्य कहेंगे। इधर स्वद्रव्य, इधर चार भाव परद्रव्य, इधर स्वभाव, इधर चार भाव परभाव, इधर अंतर तत्व, इधर चार भाव बाह्य तत्व, इधर उपाधेय, इधर भेद। ये तकनीक है, ये है प्रकार। देखो परद्रव्य है इसलिए वे क्या है, ये आश्रय करने योग्य नहीं है, अवलंबन करने योग्य नहीं है, अपनापन करने योग्य नहीं है, मैं मानने योग्य नहीं है। बहुत से लोगों को जब ये बात चल रही ना, ठीक है बॉन्ड करके ये है, अभाव करके ये नहीं है, ध्यान देना बॉन्ड करके ये है। अनिता भाई साहब तुम्हें बार 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 गौन 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 याद आ रहा है, ये गौन हुआ कि मुख्य हुआ? उपवास कर रहे हो, उस दिन 24 घंटे रोटी आ रहा है, आज रोटी नहीं खानी, अरे नहीं खाने के नाम पर याद आवे, खाने के नाम पर याद आवे तो माफी है, नहीं नहीं खाने के नाम पर भी याद आई ना, आज रोटी आज रोटी खानी आज रोटी खानी आज रोटी खानी रोटी खा रहा है, क्यों खा रहा है? कि आत्मा भीतर की भी रोटी खाता है, जड़ रोटी तो आत्मा खाता ही है। देखो शर्म का उदाहरण देना, यही है बोल करके यही कहा है, बोल करके यही कहा है, बार बार अगर तुझे गौण याद आता है तुमने सच उसने गौण माना ही, गौण कैसे ही उसे है उसकी याद नहीं, बस इतनी बात है, हम उसके उसकी अस्थि को ज्ञान में स्वीकार करते हैं। बार बार अगर वो याद आवे उसका नाम गौण, गौण का मतलब दूसरा हे माने द्वेष वाचक नहीं, हम लोग हे का मतलब हे कहते ही हमारा मूड बिगड़े, हे अगर तुमने हे को द्वेष वाचक माना, उपाधेय को राग वाचक नहीं माने, द्वेष छोड़ के राग किया अथवा राग छोड़ के द्वेष किया तो कौन सा बड़ा काम? हे का मतलब होता है उपेक्षा वाचक, और उपेक्षा का मतलब क्या होता है कि जिसकी हमको उपेक्षा बढ़ती है ना, हम उसके अस्तित्व के बारे में ज्यादा विचार नहीं करते, है चला गया ठहरा है रहता है अभी गया कब जाएगा, राग के संदर्भ में कह रहा हूं, राग को हे माना ना, अब राग को हे माना हमको यही चिंता लगी रहती, ये राग को हमने हे माना, अभी राग कब जाएगा, अभी राग कब जाएगा, गया।
तुझे राम दिख रहा, जब तूने उसे हे मान लिया तो तेरे अस्तित्व में तुझे राम दिख रहा है।
लेकिन फिर भी जाएगा तो जल्दी चला जाएगा, बहुत अच्छा।
तेरा हे तूने मान लिया है, फिर अभी जाए पांच गांव पास जाए।
ऐसी उपेक्षा जब ऐसी उपेक्षा जब हो जाएगी ना, चला जाएगा यहां तो उससे क्या नहीं होगा। यहां तो चारों भावों को हे का मतलब क्या, कि ज्ञानी की दृष्टि में कोई भाव उपादेय अर्थात आश्रय करने लायक नहीं। देखो छाई भाव तो भी है, छाई भाव का तो अपन विकल्प कर सकते हैं, तो जो है नहीं उसके लक्ष्य से तो विकल्प ही होगा। और छाई भाव जिसको होगा, गजब की बात ये, जिसको छाई भाव का आश्रय नहीं, जिसको छाई भाव का आश्रय मान, जिसने माना है उसे ओदरिक भाव हो। बात समझ आने के लिए बहुत गजब बात है, सामान्य बात है। देखो ये है और क्या कहा, अंतर तत्व एकता स्वर द्रव्य आत्मा क्या है, वो कहते हैं वो उपादेय है। अंतर तत्व जब इसको अंतर तत्व कहेंगे उनको कहेंगे बहिर तत्व, इस आत्म स्वभाव को स्वर द्रव्य कहेंगे तो उनको कहेंगे पर द्रव्य, आत्म स्वभाव को उपादेय कहेंगे उसको कहेंगे हे, इसको स्वभाव कहेंगे उसको कहेंगे पर। और देखो एक बात को 38 नंबर की गाथा में भी ये विषय है, 38 नंबर की गाथा है ना समाचार की, यानी अपने इसी नियमकार की, उसमें भी ये विषय आया था। वहां भी आचार्य ने कहा था हे उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन, और इस 50 नंबर की गाथा में भी उसी कथन का उपसंहार करके एक प्रकार से शुद्ध भाव अधिकार की विषय वस्तु समेत शुद्ध भाव अधिकार भी प्रश्न का पता चलेगा कि शुद्ध भाव अधिकार की जो मूल विषय वस्तु है उसका समापन यहां है। 38 नंबर की लगा में सात जीवादि सात तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण उपादेय नहीं है, और यहां पूर्वोक्त सर्वभाव, अब सर्वभाव इन चार भावों में आएंगे, सात तत्वों में चार भाव आएंगे अथवा चार भाव में सात तत्व आए कि नहीं आए, बात है वहां तत्व की शैली में कही, यहां भाव की शैली में कही, लेकिन दोनों में भावों की शैली में कहकर चार भावों को एक परद्रव्य पर स्वभाव कहा, वहां तत्व की शैली में बात करके जीवादि सात तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपाधि दी। देखो उसमें वहां एक और बात देखना, आचार्य चंद्र मुंड ने कहा जीवादि भरी सक्षम हेयम, उन्होंने कहा जीवादि बाह्य तत्व हेय है, और टीकाकार ने वहां निकाला अंत, टीकाकार ने कहा जीवादि सात तत्वों का समूह है क्यों, वहां भी उन्होंने कारण दिया पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय है, कारण दिया हेय का कारण दिया पर द्रव्य होने के कारण, वो भी पर द्रव्य की चर्चा विस्तार से आगे करने वाला हूं बताएंगे। अब उन्होंने ग्रंथकार ने कहा हेय है, टीकाकार कह रहे हैं उपादेय नहीं, अंतर क्या है, हेय है और उपादेय नहीं है, दोनों में अंतर है, गुरुदेव ने अर्थ किया उसका। ये आचार्य देव ने करण भाषा में कहा हे है, टीकाकार ने थोड़ी भाषा को मीठा कर दी, उपादेय नहीं जैसे अभी जैसे अपन लोग ये कहें कि पुण्य धर्म नहीं है, जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बन गए वह भाव धर्म नहीं है, थोड़ा बहुत सत्व का अभ्यास भी होगा तो उस बात को झेल लेगा, धर्म नहीं है भाई पुण्य, ठीक है। और अपन कहें जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बन सकती है, वह भाव अधर्म है। तो धर्म नहीं है कहो और अधर्म है कहो, इसका अंतर क्या है? एक ही बात है ना, एक ही बात होने पर एक बात थोड़ी नहीं थी। धर्म नहीं पता चले एकदम अधर्म कैसे? धर्म से बंधन नहीं होता, गुरुदेव न्याय देते थे, धर्म से बंधन नहीं होता और जिस भाव से बंधन हो वो भाव धर्म नहीं बंद होता है ना, बंद होता है है। अब इसी ये करने का प्रयोग टीका कार्य मान लिया, उन्होंने कहा है ये टीका कार्य का उपाधि बात नहीं की, अपना दूसरी तरफ से अनेक काम हो गया, ये है उपाधि नहीं, ऐसा है ऐसा नहीं, दोनों और से उस बात को उन्होंने कर दिया। ये एक इसमें कहा, देखो ये यहां पर कहा अंतर तत्व ऐसा स्वद्रव्य आत्मा क्या है वो कहते उपाधि है। एक बात कौन आगे खत्म कर आगे देखो टीका, टीका में क्या कहते हैं, टीका का विषय देखो, यह हे उपाधि अथवा त्याग ग्रहण के स्वरूप का प्रसंग है, कौन त्याग योग्य है और कौन ग्रहण योग्य है, कौन है और कौन उपाधि है, उसके स्वरूप का हम कथन करें। और ये वही आता है, वो ये बात तो सब जगह आई है, अलग अलग तरीके से आई है। छठी आदत समय सारे की देखो, बहुत सारे इसके सामने आपको प्रमाण दे सकते, छठी आदत समय सार वहां पर क्या कहा चाहिए, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, तो प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं और ज्ञायक है, ज्ञायक भाव भी है, तो ध्यान से सुना, ज्ञायक भाव भी है, प्रमत्त दशा भी है, अप्रमत्त दशा भी है, लेकिन ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं। अब यहां पर उसका अस्तित्व सिद्ध किया गया क्या, पूर्वोक्त सर्वभाव, तो ये कहकर के सभी पर्याय भावों के अस्तित्व को स्वीकार किया, क्यों, क्योंकि जिसका अस्तित्व नहीं होता उसमें हे और उपाधि की कोई व्यवस्था नहीं। अपन इतनी अपन भी जो हिंदी वगैरह पढ़े हैं और उसमें बहुत प्रकार के निबंध अपने आए होते हैं, उन निबंधों में ऐसा आया मंत्र्या पुत्र के बारात का वर्णन और आकाश में फूलों का बगीचा आया, कोई वर्णन ऐसा भी वर्णन आया, मैंने मरुस्थल में नाव चलाई है, वर्णन क्यों नहीं आया, क्योंकि मरुस्थल में नाव चलती नहीं, वहां पर पानी गई है ना, आकाश में फूल हो गए नहीं तो कैसा बढ़िया बगीचा था, संजय के पुत्र होता ही नहीं तो उसकी बारात कैसे गई है ना। ऐसा ही उन भावों का उनमें अस्तित्व है, मुझमें ना अस्तित्व तो अन्य दर्शन क्या कहता है, अन्य दर्शन कहता है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यह दर्शन कहता है ये भी है और मैं भी हूं, लेकिन मैं ये नहीं और ये नहीं। आ इस तरह की ये बात यहाँ पर आचार्य ने की है, बहुत मार्मिक विषय है और बहुत गंभीर विषय है, अपन आगे इसकी चर्चा करेंगे, टीका की चर्चा अपन आगे कल की सौ करेंगे।
No.